ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार ने उज्यालो नेपाल अभियान अंतर्गत मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इसी साल 40 जिलों को पूर्ण विद्युतीकरण किया जाएगा, ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन का कथन। पार्टी के अंदर विवाद नहीं बल्कि सामान्य विचार विमर्श हुआ है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने किया साफ। विभिन्न जिलों में व्यक्तियों के नाम पर दर्ज रही 284 बीघा जमीन वापस सरकार के नाम पर लाई गई है, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल द्वारा जानकारी। और सीरियाई सेना के एक हवाई हमले में कम से कम 33 तुर्की सैनिकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि सुदूर पश्चिम प्रदेश में दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए विद्युतीकरण, उद्योग, होटल, घरवास, सड़क और संचार सेवा के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। कंचनपुर की भीमदत्त नगरपालिका द्वारा आयोजित तीसरे शुक्ला फाट पर्यटन महोत्सव को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि पश्चिम सेती, पंचेश्वर, कैलाश मानसरोवर लगायत परियोजनाओं को पूरा करने के काम को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि शुक्ला फाट राष्ट्रीय निकुंज के भौतिक पूर्वाधार का विकास करने के प्रति संबंधित निकायों को अग्रसर होना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि पार्टी में विवाद नहीं हुआ है बल्कि सामान्य विचार विमर्श और बहस हुई है। नेपाल प्रेस संगठन चितवन द्वारा आज भरतपुर विमानस्थल पर बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष प्रचंड ने साफ किया कि वामदेव गौतम को राष्ट्रीय सभा में लाने के सचिवालय के विषय में विवाद नहीं बल्कि विचार विमर्श हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सभा में एक सीट खाली है और उस सीट पर नेता गौतम को लाने का सर्वसम्मत निर्णय हुआ है, इसलिए इस निर्णय की अवज्ञा प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। सरकार ने सभी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उज्यालो नेपाल अभियान अंतर्गत मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आज काठमांडू में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन ने बताया कि उज्यालो नेपाल कार्यक्रम अंतर्गत इस साल 40 जिलों को पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस साल कम से कम 200 मिनी ग्रिड संचालित करने के हिसाब से 37 करोड़ रूपये का बजट विनियोजित किया गया है। मौके पर सुदूर पश्चिम प्रदेश के कानून मंत्री प्रकाश बहादुर शाह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रसारण लाइन जहां नहीं पहुंच सकी है वहां मिनी ग्रिड से बिजली जलाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य डॉ कृष्ण प्रसाद ओली ने बताया कि उज्यालो नेपाल कार्यक्रम अंतर्गत अगले 5 सालों में वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र के जरिए 127 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न जिलों में व्यक्तियों के नाम पर दर्ज 284 बीघा सरकारी और सार्वजनिक जमीन वापस सरकार के नाम पर कायम की गई है। मंत्रालय द्वारा पिछले 2 सालों में हुए कामों के विषय में जानकारी देने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि व्यवस्था मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने बताया कि विभिन्न समय में व्यक्ति के नाम पर दर्ज हुई सार्वजनिक जमीन वापस लेने का काम तेजी के साथ हो रहा है। साथ ही ये बताते हुए कि मुक्त कमैया और मुक्त हलिया के व्यवस्थापन का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि सुकुम्बासी समस्या समाधान करने के लिए सुकुम्बासी आयोग निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि अब किसी को भी छाव गोट में नहीं रहना पड़ेगा। अपनी पद बहाली के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि जन स्तर पर ही छाव गोट को गिराने का काम शुरू हो चुका है, इसलिए चालू आर्थिक वर्ष के अंदर ही देश को छाव गोट मुक्त कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि देश के कई स्थानों में रजस्वला के समय महिलाओं को अलग एक मवेशी खाने जैसे घर में रखा जाता है, जिसे छाव गोट कहते हैं। मंत्री गुरुंग ने बताया कि रजस्वला से जुड़े अंधविश्वास का अंत करने और सचेतना बढ़ाने के उद्देश्य से नेपाल में मर्यादित महीनावारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ने कहा कि साहित्य सृजन के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। काठमांडू की गोकर्णेश्वर नगरपालिका द्वारा आयोजित विश्वव्यापी राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता का आज काठमांडू के आरोबारी में उद्घाटन करते हुए मंत्री भट्टराई ने कहा कि सभी तरह के नकारात्मक पहलुओं को चीरने का सशक्त हथियार साहित्य ही है। अर्थ मंत्रालय ने साफ किया है कि पेट्रोलियम में की गई पूर्वाधार विकास कर वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ता मूल्य पर नहीं पड़ेगा। मंत्रालय ने कहा है कि फागुन 12 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने पूर्वाधार विकास कर की दर में परिमार्जन किया है, लेकिन इससे उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कर की दर में किए गए परिवर्तन से मौजूदा समय में बाजार में कायम उपभोक्ता मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नेपाल ऑयल निगम की स्वचालित मूल्य प्रणाली से कायम होने वाले मूल्य पर भी असर न हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सीरियाई सेना के एक हवाई हमले में कम से कम 33 तुर्की सैनिक मारे गए हैं। तुर्की के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये हमला उत्तर पश्चिमी सीरिया में हुआ है। तुर्की के हाताय प्रांत के गवर्नर रहमी डोगन के हवाले से बीबीसी ने बताया कि इस हमले के कारण इदलिब में कई लोग घायल हुए हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 33 से अधिक है। मिल रही खबरों के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोवान ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई थी, जिसके बाद तुर्की सीरियाई हमलों का उत्तर दे रहा है। इदलिब फिलहाल विद्रोहियों के कब्जे में है और रूस के समर्थन वाली सीरियाई सेना विद्रोहियों के कब्जे से इदलिब को छुड़ाना चाहती है। बताया जा रहा है कि विद्रोहियों को तुर्की सेना का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रपति अर्दोवान चाहते हैं कि सीरियाई सरकार अपनी सेना को उन ठिकानों से पीछे बुलाए जहां तुर्की ने निगरानी के लिए अपने सैन्य ठिकाने बनाए हैं। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर सीरियाई सेना आगे बढ़ती रही तो वो उचित कदम उठाएंगे। सीरिया की सरकार और रूस ने साल 2018 में हुए युद्ध विराम को मानने से इनकार करते हुए सीज फायर लाइन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। रूस का आरोप है कि विद्रोहियों की मदद करके तुर्की ने भी समझौते का उल्लंघन किया है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक गुरुवार शाम हुए हवाई हमले में करीब 34 तुर्की सैनिक मारे गए हैं। बीते साल दिसंबर से इदलिब में लड़ाई जारी है, जिस कारण यहां से लाखों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहां व्यापक स्तर पर युद्ध हुआ तो कईयों की जान को खतरा होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। सरकार ने उज्जालो नेपाल अभियान अंतर्गत मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इसी साल 40 जिलों को पूर्ण विद्युतीकरण किया जाएगा, ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन का कथन। पार्टी के अंदर विवाद नहीं बल्कि सामान्य विचार विमर्श हुआ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने किया साफ। विभिन्न जिलों में व्यक्तियों के नाम पर दर्ज रही 284 बीघा जमीन वापस सरकार के नाम पर लाई गई है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल द्वारा जानकारी। और सीरियाई सेना के एक हवाई हमले में कम से कम 33 तुर्की सैनिकों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।